ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய விரச்சித் சிவபக்தி ச யுக்த சிவானந்த லஹரி க பிரசங்க ஹை. அபியாஸ் கே லியே ஸ்லோக் நம்பர் 56 நித்யாய த்ரிகுணாத்மனே புரஜிதே காத்யாயனீ ஸ்ரேயசே சத்யாயாதி குடும்பினே முனிமனா பிரத்யக்ஷசின்மூர்த்தயே மாயா ஸ்ருஷ்ட ஜகத்ரயாய சகலா அம்னாந்த சஞ்சாரிணே சாயந்தாண்டவ சம்ப்ரமாய ஜடினே சேயம் நதி சம்பவே நித்யம் சோதர பூரணாய சகலா நித்யம் சோதர பூரணாய சகலா நுத்திஷ்ய வித்தாசயா வ்யர்த்தம் பரியடனம் கரோமி பவத சேவாம் ந ஜானே விவோ மஜ்ஜன்மாந்தர புண்ய பாக பலத தம் சர்வ சர்வாந்தரஸ் திஷ்டசேவஹிதேன வா பசுபதே தே ரக்ஷணீயோஸ்மியம் ஏகோ வாரிஜபாந்தவாச்சிதி நவோ வ்யாப்தம் தமோ மண்டலம் வித்வாலோசன கோச்சரோபி பவதி தம் கோடி சூரிய பிரவஹ வித்ய கிம் ந பவஸ்யஹோ கணதரம் கீத்ருக் பவின்மத்தமாஸ் சர்வம் விபனீயமே பசுபதே சாட்சாத் பிரசன்னோ பவ ஹம்ஸஹ பத்மவனம் சமிச்சதி யதா நீலாம்புதம் சாதக கோகஹ கோகநத பிரியம் ப்ரதிதினம் சந்திரம் ச கோரஸ்ததா சேதோ வாஞ்சதி மாமகம் பசுபதே சின்மார்கம் ரிக்யம் விவோ கௌரிநாத பவத் பதாப்ஜ யுகலம் கைவல்ய சௌக்ய பிரதம் ரோதஸ்தோ யஹிதாஸ்ரமேண பதிகஸ் छायां तरोर वृष्टितो भीतः स्वस्थ गृहं गृहस्थमतिथिर् दीनः प्रभुं धार्मिकम् दीपं संतमसा कुलश्च निखिसकिनम् सीतावृतस्त्वं तथा चेतसर्वभयापहं व्रजसुखम् शम्भो पदाम्भोरुहम् नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाय सकला आम्नान्तसञ्चारिणे सायन्ताण्डवसम्भ्रमाय जटिले सेयं नतिः सम्भवे आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव प्रति अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं। भक्ति भाव प्रदान हुआ करता है, बुद्धि प्रदान नहीं। भक्ति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की आवश्यकता वहां होती है जहां प्रमाण प्रमेय के प्रतिपादन किया जाता हो। प्रातःकाल प्रवचन सुन रहे हो श्रुतिसार समुद्धरणम्, बुद्धि के बिना कुछ पल्ला पड़ने वाला नहीं है, वहां बुद्धि की आवश्यकता है। भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास और भाव का विषय है। भक्ति में व्यक्ति भावुक होता है। क्यों और कैसा, ये प्रश्न उसके सामने खड़ा नहीं होते। जैसा भी होगा उसको स्वीकार करेगा। स्वीकार करना ही भक्ति का लक्षण है। परमात्मा काला है तो ठीक है, उसको स्वीकार करना। काला क्यों हुआ, ये भक्ति का विषय नहीं है भाई। कृष्ण काले क्यों हुए और शिव गोरे क्यों हुए, ये भक्ति का विषय है। शिव यदि गोरे हुए तो किस कारण से गोरे हुए, क्योंकि कारण का गुण कार्य में दिखता है। उनका कोई कारण गोरा होगा तब ना वो गोरा का धर्म शिव रूपी कार्य में गोरा हुआ। आप समझ गए। और कृष्ण काले क्यों है, शिव का जो शरीर है वह किसी और मटेरियल से बना, सफेद सोने से बना, इसलिए शिव गोरे हो गए।
कृष्ण का जो शरीर बना वह किसी और मटेरियल से बना, काले मिट्टी से बना होगा, इसीलिए कृष्ण काले हुए। क्योंकि कृष्ण का शरीर बनाने के लिए जो मिट्टी थी वो काला था, इसलिए काला। कारण का गुण कार्य में आग, ये बुद्धि का विषय है, ये तर्क का विषय है। हालांकि अनुप जलोटा ने भजन गा दिया है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला है, प्रश्न रख दिया है सामने, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, उत्तर तो दिला दिया है। तो आधी रात में आया इसीलिए काला हुआ है, उत्तर भी दे दिया है, माने उत्तर भी दे दिया, तो आधी रात में आया इसलिए काला हुआ। अरे भाई, आधी रात में आने के कारण काला होता तो पूर्णिमा का चंद्रमा भी काला होता। पूर्णिमा का चंद्रमा आधी रात में होता है कि नहीं है? पूर्णिमासी का जो चंद्रमा है वो आधी रात में रहता है कि नहीं आकाश में? तो आधी रात में आने के कारण यदि काला होता है तो फिर चंद्रमा क्यों वो सफेद है? वो भी तो काली होनी चाहिए, बिल्कुल काला, फिर आधी रात में आया है।
लेकिन जसोदा ने एक जवाब दे दिया, वो चुप ला के चुप होकर बैठ गई कृष्ण कि अच्छा मैं रात को आया था इसलिए काला हूं, आधी रात को आया था। और राधा क्या दिन में आई थी मध्याह्न में, इसीलिए गोरी हुई है। ये बुद्धि का विषय है, ये तो जो कह दिया उसको मानना, ये भक्ति का विषय है। क्यों काली है, क्यों गोरी है, क्यों सफेद है, क्यों वैसा कृष्ण हमेशा टेढ़ा क्यों, शिवा हमेशा सीधे क्यों, ये कोई भक्ति में ये सब चीज नहीं चलता है। जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है। काला है तो काले ही रूप में स्वीकार करो, गोरा है तो गोरे ही रूप में स्वीकार करो, टेढ़ा है तो टेढ़े ही रूप में स्वीकार करो, चोर है तो चोर के रूप में स्वीकार करो, दाता है तो दाता के रूप में स्वीकार करो, है? यही भक्ति का विशेष है। भगवान शंकराचार्य जी अपने हृदय के भाव को शिव जी के सामने रखते हैं। यहां हमने कल के प्रसंग में कहा था, ये दो श्लोक भगवान शिव के दो स्वरूपों का वर्णन करता है, एक तटस्थ लक्षण का और दूसरा स्वरूप लक्षण का। स्वरूप लक्षण परमात्मा का पारमार्थिक है, तटस्थ लक्षण परमात्मा का पारमार्थिक नहीं है। कार्य कारण भाव को समझाने के लिए परमात्मा में तटस्थ लक्षण का आरोप किया गया है, और उसी तटस्थ लक्षण के द्वारा ही परमात्मा जगत का कार्य कारण भाव को सिद्ध करता है। और परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसमें तटस्थ लक्षण का कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र भी नहीं, यानी कार्य कारण भाव का कोई संबंध ही नहीं है परमार्थिक स्वरूप। केवल चार भाव है स्वरूप लक्षण में, पांचवा है ही नहीं। अस्ति, भाति, प्रिय, अद्वैत, अद्वितीय, सत, चित, आनंद और अद्वितीय, ये पारमार्थिक स्वरूप है। ये चार भाव भी कोई माया का संबंध नहीं है, कोई उपाधि का संबंध नहीं है। सत उसका स्वरूप है, चित उसका स्वरूप है। सत घन चित घन आनंद घन ऐसा कहते हैं शास्त्र में, और अद्वितीय, ये किसी की अपेक्षा से अद्वितीय है ऐसा नहीं है। सदैव सौम्यदमग्राचित एकमेवाद्वितीयम्, सजातीय विजातीय सुगत भेदत्र शून्य अद्वितीय। इसके अलावा बाकी परमात्मा के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब के सब तटस्थ लक्षण, और तटस्थ लक्षण सोपाधि है, उपाधि के कारण उसमें ये लक्षण आए हैं। क्योंकि उपाधि आरोपित है इसलिए ये तटस्थ लक्षण भी परमात्मा में आरोपित मात्र हैं। आरोप क्यों किया जाता है? तो अपवाद करने के लिए, लक्ष्य को लक्षित कराने के बाद आरोपित धर्म का अपवाद करना पड़ता है। जब तक लक्ष्य पर लक्षित लक्ष्य पर नहीं पहुंचे तब तक आरोप की उपयोगिता है। लक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाने के बाद फिर उन आरोप की कोई उपयोगिता नहीं, इसीलिए किनारे पहुंचने के बाद नौका की कोई उपयोगिता नहीं। नौका की उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता कब तक है? किनारे जब तक नाव पहुंचो, पहुंचने के बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अपवाद है। इस पार से उस पार जाना हो तो नौका का सहारा लेना पड़ेगा, और नौका के सहारे से उस पार पहुंचने के बाद फिर नौके को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए तटस्थ लक्षण, तटस्थ नौका हमेशा किनारे में ही रहेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे से एक किनारा, एक किनारे से वो किनारे से एक किनारा, उधर को इधर लाएगा, इधर को उधर ले जाएगा, उधर को इधर लाएगा, इधर तट में रहने वाला तटस्थ। हाँ, स्वरूप में नहीं रह सकता है। इन्हीं भाव को यहां बता रहे हैं। पहला लक्षण है स्वरूप लक्षण, नित्याया त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादि कुटुंबिने मुनि मनः प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये माया सृष्ट जगत्त्रयाय सकला आम्नायांत संचारिणे सायंतांडव संभ्रमाय जटिने सेयम् नति ही संभवे। संभवे सम्यक एव भवतीति संभव, न अन्य किमपि कारणे न भवति, सम्यक एव स्वयं एव भवति इति संभव। किसी अन्य के कारणों के अपेक्षा से न होकर वह स्वयं ही जो होता है उसको संभव कहते हैं। संभव कहना और सत कहना एक ही चीज है। किसी कारण से उत्पन्न होकर होना वो संभव नहीं है, केवल भाव है। समझे कि नहीं? भावा होना और संभव होना में बड़ा अंतर है। भावा अर्थात वह किसी न किसी कारणों के माध्यम से जो अस्तित्व में आया, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद अस्तित्व में आया, तो उसको कहते हैं भावा। भवति इति भाव हुआ, किससे हुआ? किसी से हुआ। हुआ भव माने हुआ, किससे हुआ? किसी से हुआ। कारण का पता लगाओ, था, घटा घड़ा हुआ किससे हुआ? मिट्टी से हुआ। रोटी हुई किससे हुआ? तो आटे से हुई, इत्यादि इत्यादि, किसी न किसी से हुआ। लेकिन रोटी को संभव नहीं कहेंगे, घड़े को संभव नहीं कहेंगे, सम उपसर्ग नहीं लगेगा। भव तो है, सम उपसर्ग नहीं। सम, सम का अर्थ होता सम्यक, स्वयं एव भवती इति संभव। जिसका होना अपना किसी अन्य की अपेक्षा बिना ही स्वयं सिद्ध है, उसको कहते हैं संभव। ऐसे संभव को यानी शिव को सा यम नति ही, मेरा यह नमस्कार है। यम नति ही है। और कैसे हैं वो जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो? वो और कैसे हैं? उनके क्या विशेषता है? और नित्याय, क्योंकि वो नित्य हैं, इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। क्योंकि वह नित्य हैं, इसीलिए उनको मैं नमस्कार करता हूं। अनित्य को नमस्कार करके क्या मिलने वाला है बोलो? अनित्य को नमस्कार करके क्या मिलने वाला है? अनित्य यदि प्रसन्न होकर देगा तो क्या देगा? अनित्यता ही देगा, अनित्य ही वस्तु देगा। क्योंकि जो नित्य है वो प्रसन्न होकर जो देगा वो भी नित्य ही होगा। नित्य कोई वस्तु विशेष नहीं है, नित्य कोई पदार्थ नहीं है, नित्य तत्व है। इसलिए नित्य जो देगा वह नित्य ही देगा। मोक्ष जीवात्मा का नित्य है। परमात्मा यदि जीवात्मा को मुक्ति देंगे, वह कोई सावधिक नहीं होगा। परमात्मा जीवात्मा को यदि मोक्ष देंगे तो कोई सावधिक नहीं होगा। अमेरिका आपके पासपोर्ट में वीजा देगा तो सावधिक होगा, 5 साल का देगा या 10 साल का देगा, है सावधिक होगा। और अमेरिका एयरपोर्ट में उतरने के बाद वीजा में तो 10 साल का ठप्पा लगा रखा है पासपोर्ट में, और वहां एयरपोर्ट में उतरोगे इमिग्रेशन में, वो 6 महीने से ज्यादा का इमिग्रेशन नहीं देता, 6 महीने का देता है। हाँ, ज्यादा दिया तो 6 महीने का होता है। 6 महीना घूमो अमेरिका, जहां भी घूम सकते हो डुब निर्धम। 6 महीने से ज्यादा रहना होगा तो फिर आपको इमिग्रेशन को एक्सटेंस करना होगा, और 6 महीना और एक्सटेंस कर देगा उसके बाद तो वो एक्सटेंशन नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। 2-4 दिन के लिए भी तुमको फिर अमेरिका की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लोग कहीं कनाडा जाते हैं कनाडा तो नजदीक है, कनाडा 2-3 घंटे की फ्लाइट है न्यूयॉर्क से। कनाडा गए, घूम फिर के फिर शाम को आए, इमिग्रेशन में 6 महीने का ठप्पा और लगा दिया उसने, बस हो गया काम। कोई लंदन जाते हैं, कोई कनाडा जाते हैं, घूमते हैं जब तक पासपोर्ट में वीजा का वैलिडिटी है। तो ये तो सावधिक है भाई, तुम्हारा जीवन ही सावधिक है है कि नहीं बोलो? ये अलग है कि परमात्मा ने इस वीजा में ठप्पा जो है डेट नहीं डाला है, एक्सपायरी डेट नहीं डाला है, ये अलग चीज है। लेकिन वही तो कह रहे हैं ना, एक्सपायरी डेट डाल दिया होता तो डाला जरूर है, वो कहां डाला कैसा डाला है वो उसके वो स्क्रैच करना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, जैसे आजकल जो है कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है नंबर रहता है लेकिन दिखता नहीं, मशीन उसको पढ़ सकता है वो नंबर मशीन तो पढ़ता है, मशीन को ऐसा देखा तो वो खट से वो नंबर पढ़ लेगा, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, काला काला सा क्या दर लाइन लाइन सा खिंचा हुआ क्या क्या है पता ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं चलेगा उसकी भाषा, लेकिन उसके अंदर नंबर है वो मशीन पढ़ लेता है। इसी तरह एक्सपायरी डेट जो है तो परमात्मा ने डाला तो है, हम लोग नहीं पढ़ सकते वो पढ़ सकता है, यमराज पढ़ लेगा वो खट से है। हाँ तो वो एक्सपायरी डेट, ये भी लिमिट है, सावधिक है जीवन तुम्हारा, परमात्मा के दिया हुआ हो चाहे जिसका भी दिया हो ये जीवन है वो सावधिक है, अवधि में समाप्त होने वाला है, लेकिन परमात्मा खुद नित्य है वो सावधिक नहीं है, क्योंकि यावत सावधिक को जजमेंट करने वाला भी सावधिक होगा तो कौन झटपट करेगा, वो तो निरवधि होना पड़ेगा, इसलिए वो नित्य है, है? अवस्थात्रय का जो साक्षी है उसको नित्य कहते हैं। नित्य किसको कहते हैं? अवस्थात्रय के साक्षी है उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों अवस्था का जो साक्षी होगा वह क्या होगा? नित्य होगा। उत्पत्ति का भी वह साक्षी है, स्थिति का भी साक्षी है, लय का भी साक्षी, और लय का साक्षी भी लय हो गया तो फिर लय का साक्षी कौन होगा? इसलिए एक व्यक्ति जो लय रहित होगा तो उसी का नाम नित्य होगा, उसी का नाम परमात्मा होगा, उसी का नाम ब्रह्म होगा, उसी का नाम आत्मा होगा। यहीं पर तो शून्यवादी लोग मार खा जाते हैं, कहते हैं सर्वम शून्यम, जगत में कुछ भी नहीं है, जगत भी नहीं, जीव भी नहीं, जीवन भी नहीं, आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ नहीं, सर्वम शून्य। बोले परमात्मा भी नहीं आत्मा भी नहीं, इसका कोई साक्षी होगा कि नहीं? परमात्मा नहीं रहता महाप्रलय में, परमात्मा भी नहीं रहता, इसका कोई साक्षी है कि नहीं? और यदि कोई भी साक्षी नहीं है कहोगे तो महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता ये बात हम कैसे माने, साक्षी नहीं है तो कैसे मानेंगे? महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता इसका कोई साक्षी है तो वो कौन है? परमात्मा ही है कि अनात्मा है? अनात्मा तो साक्षी हो नहीं सकता, परमात्मा अपने विनाश का अपना खुद का साक्षी कोई भी नहीं होता है, होता है? अपनी मृत्यु का साक्षी अपने होगा है? अपने विनाश का साक्षी खुद ही होगा? नहीं होगा, साक्षी तो विनाश रहित ही होना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म आत्मा परमात्मा वह सत्य है, साक्षी है, इसलिए अवस्था त्रय का जो साक्षी होगा उसी को कहते हैं नित्य। चतुर्थी है नमः में चतुर्थी विभक्ति, आप लोग रामायण पढ़े हो कि नहीं है? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी पढ़े हो, भाषा में पढ़े हो, कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान है, कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान, अपादान संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, अलग होने और नीचे गिरने अर्थ में पंचमी होता है, किसी को देने अर्थ में चतुर्थी होता है, तो जहां चतुर्थ विभक्ति लगता है वहां देना होता है, तो तस्मै शिवाय क्यों बोलते हैं? शब्द है शिव, नमः शिवाय। तो हम क्या कहते हैं, नमः शिव, शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो शिवाय आय, यह जो विभक्ति है शिव प्लस आय चतुर्थी, यानी इसका अर्थ हुआ शिव को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार मैं शिव को दे रहा हूं। ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को नमस्कार है। ब्राह्मणाय दक्षिणाम देही, ब्राह्मण को दक्षिणा द्यो। नौकर को तनख्वाह दो, चतुर्थी नहीं लगेगा वहां, वो तो तनख्वाह है ना, दक्षिणा नहीं है। नित्याय, नित्य प्लस आय, नित्य कौन है, तो भगवान है, क्योंकि वो नित्य है इसलिए उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्योंकि नित्य को नमस्कार करोगे तो फल नित्य मिलेगा, नित्य फल क्या है, मोक्ष, ये नित्य फल है। भगवान यदि मोक्ष देंगे तो सावधिक नहीं होगा, समझे कि नहीं, भगवान जो मोक्ष देंगे वह सावधिक नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं रहेगी उसमें, इतने समय के लिए मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, हैं? कितने वर्ष के लिए मुक्ति चाहिए आप, हैं? एक संप्रदाय चल पड़ा था ना यहां, आजकल भी है शायद, ओसो चलता रहा, ओसो है, वो तो अपने आप तो गए, लेकिन है उनका संप्रदाय अभी भी है ओसो। तो हमने जब सुना, ओसो क्या करते थे कि उनके अनुयायियों को संन्यास देते थे, बोले उनका संन्यास की प्रक्रिया क्या थी, बोले सावधिक संन्यास। अब संन्यास भी कई सावधिक होता है, हमको सुनाया किसी ने, सावधिक माने तुमको कितने दिन के लिए संन्यास चाहिए, तो उनके सामने जाकर कहते थे कि 1 हफ्ता के लिए संन्यास दे दो, तो वह लिख कर देते थे 1 हफ्ता के लिए तुझे संन्यास, तो 1 हफ्ता के बाद फिर तो संन्यास छोड़ो, कोई 1 महीना के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए, ऐसा ऐसा उठपटांग भी होता रहा दुनिया में, अभी भी हो रहा है, होता है सावधिक संन्यास, संन्यास भी कहीं सावधिक होता है, अब ये सब बकवास ही है कि नहीं बोलो। ब्रह्मज्ञान तुमको कब तक के लिए चाहिए, हैं? ब्रह्मज्ञान कब तक के लिए चाहिए तुम्हें, सावधिक बोलो, क्या बात करते हो बाबा, समझ में नहीं आता है ब्रह्मज्ञान, तुम्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान कितने समय के लिए चाहिए, सावधिक ज्ञान कहीं सावधिक होता है, तुम स्कूल में पढ़ने जाओ और मास्टर तुमसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे विद्या चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, बोलो सावधिक होता है, क्या बात करते हो, ज्ञान सावधिक नहीं होता, मोक्ष सावधिक नहीं होता। नित्याय, क्योंकि ज्ञान भी नित्य है, ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो ज्ञान भी नित्य है, तो मोक्ष भी, एक बार हो गया तो हो गया, काम खत्म, उसके बाद फिर दोबारे मुक्त होने का कोई प्रश्न नहीं। तो तुम अभी भी मुक्त हो, क्योंकि ज्ञान नित्य है, मोक्ष नित्य है, तुम्हें ये पता नहीं कि मैं मुक्त हूं, तुमको भ्रांति ये हुआ कि मैं फंसा हूं, तुमको भ्रांति ये हुई है कि मैं फंसा हूं, फंसे कहां हो भाई, तो तुम्हारा फंसना काल्पनिक है, ये तो वेदांत सिद्धांत कहता है, तुम्हारा फंसना तुम्हारी अपनी कल्पना है, काल्पनिक है, तुम फंसे कहीं नहीं हो। नित्याय, ये स्वरूप लक्षण है, ऐसे जो नित्य स्वरूप वाले भगवान हैं, शंभू हैं, परमात्मा हैं, उनको अयम इयम नति ही, मेरा ये नमस्कार है। और कैसे हैं वो? त्रिगुणात्मने, ये तटस्थ लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुणात्मक है और त्रिगुणात्मक है तो का मतलब अर्थ हुआ कि माया में विद्यमान जो तीन गुण हैं उन तीन गुणों का वह प्रकाशक है, तीन गुणों का आत्मा है, माने तीन गुणों का अस्तित्व परमात्मा से सिद्ध है। तीन गुणों का अस्तित्व माया से सिद्ध नहीं है। माया से क्यों सिद्ध नहीं है? माया खुद ही सिद्ध नहीं है तो क्या त्रिगुणों को सिद्ध करेगी? वो माया का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है तो तीन गुणों को कैसे सिद्ध कर सकती है? वो माया को अपने अस्तित्व में आने के लिए ही उस परमात्मा का आश्रय चाहिए। परमात्मा के आश्रय में माया अस्तित्व में आई और उसी परमात्मा के अस्तित्व में तीन गुण अस्तित्व में आए, इसलिए तीन गुण के आत्मा, आत्मा माने तीन गुणों को अस्तित्व में लाने वाले कौन है? तो परमात्मा। तुझार ये ऐसी थोड़ा कम कर सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कुछ ठंडी ही है ज्यादा। एक दो को बंद कर दो, एक दो को चलाओ, बाकी बंद कर। सोफोकेशन बढ़ेगा, सब बंद करो। हाँ, एक दो चलाओ, बाकी बंद करो। हाँ, तो एक दो चलाओ, चलाना पड़ता है, वो एग्जेशन करेगा ना, फिर हवा अंदर का जो सोफोकेशन है बाहर फेंकेगा। हाँ, बस बस। नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते, पुरजिते का अर्थ हुआ त्रिपुरासुर को जिसने जीता है, पुरजिते, पुर को जीता। कितने पुर हैं? तीन पुर हैं। तुम क्या हो? त्रिपुरासुर हो। तुम और हम क्या हैं? हैं? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं भाई, मनुष्य समझते हो तुम लोग? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं। एक राक्षस हुआ नहीं, सुना हुआ है ना? उसने तपस्या की, बड़ा भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान तो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। तुमको मृत्यु से डर लगता हो तो आत्मानंद से वेदांत तो पढ़ो। ब्रह्म विद्या ही तुमको मोक्ष दे सकता है। मुक्त हुआ हुआ जीव ही मृत्यु से पार होता है, उसको मरना नहीं पड़ेगा। तो मरना न पड़े ये अवस्था तो ज्ञान से ही होता है। तमेव विदित्व अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, श्रुति ने कहा है ना, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। वो ज्ञान से ही होगा। बोले महाराज ज्ञान हमारी बस की बात नहीं, असुर है तो कहां से ज्ञान आएगा उसको? ये ज्ञान साधना हमारी बस की बात नहीं है महाराज। तो क्या चाहते हो? बोले फिर भी हमको मृत्यु से डर लगता है, हैं? मरना न पड़े, कोई उपाय वरदान दो। बोले बेटा देखो, मरना न पड़े ये तो मोक्ष ही होगा, ज्ञान से ही होगा। मरना तो पड़ेगा पड़ेगा ना, तुम अपने बुद्धि लगाओ, निमित्त मृत्यु मांगो। ऐसा हो तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको बोलते हैं निमित्त मृत्यु, ऐसा हो तो मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम निमित्त मृत्यु मांगो, उसने बड़ा बुद्धि लगाया। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तीन रथ दे दो, मुझे तीन रथ दे दो, एक लोहे का रथ, दूसरा तांबे का रस तामा, और तीसरा सोने का रस। ये तीन रथ मुझे दे दो, और तीन रथ में मैं उड़ता रहूं, रथ में ही घूमता रहूं, अंतरिक्ष में आकाश में घूमता रहूं, फिरता रहूं। और ये रथ, तीन रथ कभी भी आमने सामने ना आवे, लाइन से आमने सामने ना आवे। एक रथ उधर है तो दूसरा उधर, तीसरा उधर है। भगवान ने कहा कि, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटे में केवल एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आएंगे हैं, बाकी ये तीनों रथ एक दूसरे विपरीत घूमते रहेंगे, आमने सामने केवल एक मुहूर्त के लिए आएंगे। आगे उसने सोचा नहीं, एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आता है तो कोई हर्जा नहीं है। अब क्या मांगते हो वरदान, बोलो। बोले तीन रथ को अप्रसिद्ध, कभी कहीं किसी ने न सोचे हुए हथियारों से कोई यदि तीनों रथ को एक ही बार तोड़कर नष्ट करता है, भेदन करता है, तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, क्योंकि ये विश्व सृष्टि में परमात्मा के लिए माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं? इस विश्व सृष्टि में माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने माया के बारे में कहा है, मायायाम सर्वसंभव। माया है तो कुछ भी हो सकता है, बस असंभव कुछ भी नहीं है माया में। मायायाम सर्वसंभव, इसलिए माया के बारे में और दूसरी जगह शंकराचार्य जी ने अघटित घटना पटी यसी माया, कभी किसी के द्वारा सोचा भी नहीं गया हुआ भी वह घटना को घटित करके दिखाने की क्षमता किसमें है? माया में है। और उस माया का आश्रय लेगा कौन? तो परमात्मा। और जब परमात्मा उस माया का आश्रय लेगा तो उसके सामने असंभव कुछ होगा नहीं। लेकिन यहां तक तो उसकी बुद्धि गई नहीं असुर की, उसने तो विचार किया कि असंभव अप्रसिद्ध हथियारों से है? प्रसिद्ध हथियार नहीं, प्रसिद्ध हथियार तो यही धनुष बाण और तीर बंदूक गोले तोप, यही ना है। और एक ही तीर से तीनों रथ को तोड़ सके एक ही बार में, तब जाके मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी को तो पता था कि असंभव कुछ भी नहीं है। तथास्तु, तेरी इच्छा अनुसार ही तेरी मृत्यु हो। ठीक है, तेरी मृत्यु हो तो इसी तरह। अब तीन रथ दे दिया, लोहे का रथ, तांबे का रथ और सोने का रथ दे दिया, और तीनों रथ में वह विचरण करने लगा। कभी लोहे के रथ में घूमता है, हाँ? तुम अभी कौन रथ में घूम रहे हो? ए त्रिपुरा सुरो, हाँ, लोहे का रथ में है, हाँ? ये शरीर जो है लोहे का रथ है, ये देखो तुम्हारे में तीन पूर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर ही तीन पूर हैं। और इस शरीर में घूमने वाले हम, जागृत में स्थूल शरीर में, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में, और सुषुप्ति में कारण शरीर। और कारण शरीर सुषुप्ति से जगते हैं तो या स्वप्न में या फिर जागृत में स्थूल शरीर में, एक ही बार तीनों शरीर में तो हम रह नहीं सकते। इसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो इसमें नहीं है। तो यही त्रिपुरासुर का लक्षण है। ये जीव भाव ही त्रिपुरासुर है, समझे कि नहीं? हमारी जो जीव भाव है वही त्रिपुरासुरपना की भाव है। और ये जीव भाव का छेदन करेगा कौन? जो इस तीन पुरों का नाश करेगा तभी जाकर हमारा जीव भाव नाश होगा, समझे कि नहीं? तीन पुरों में अहम बुद्धि जब तक रहेगी जीव भाव नष्ट होगा। स्थूल शरीर में जन्म मृत्यु का भाव, सूक्ष्म शरीर में भूख प्यास कर्ता भोक्ता का भाव, सुषुप्ति शरीर में मूर्खता का भाव, अज्ञानता का, मूर्खता, मैं कुछ नहीं जानता। जब पूछो तुम जानते हो, बोले नहीं जानता। ले जी, परमात्मा को जानते हो, बोले नहीं जानता। अपने को जानते हो, बोले नहीं जानता। यही तो मूर्खता का भाव। तो ये त्रिपुरासुर का भाव है। शिव महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सुंदर ढंग से त्रिपुरासुर के वध के बारे में एक श्लोक ही तैयार किया है। रथ क्षोणी यंता सतधृति रघेन्द्रोर धनुरथो रथांगे चंद्रारक रथ चरण पाणी सरयति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधिर विधेयी क्रीडंत्यो न खलु परतंत्र। देख लो ये भाव है त्रिपुरासुर को वध करने का, आडंबर भगवान शिव ने रचा। और तीनों रथ में विचरण करता हुआ त्रिपुरासुर को कोई मार ही नहीं सके, इतना शक्तिशाली हो गया कि तीनों लोक में उसका तहलका मच गया। देवता आदि सब गए, प्रार्थना किया भगवान शिव को कि महाराज बचाओ, किससे? त्रिपुरासुर से। इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, कहां से हुआ? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तीन रथ दे दिए, और कोई उसके तीन रथ को एक ही साथ जो तोड़ेगा नष्ट करेगा तब उसको मारेगा। अब उसके तीनों रथ को तोड़ना संभव नहीं है। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र भी तीनों रथ को तोड़ने में समर्थ नहीं है, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी तीनों रथ को तोड़ना समर्थ नहीं है। शिव जी ने कहा कि मेरा त्रिशूल समर्थ होगा? बोले तुम्हारा त्रिशूल भी समर्थ नहीं होगा, क्योंकि त्रिशूल भी सुदर्शन चक्र भी ब्रह्मास्त्र भी प्रसिद्ध अस्त्र है। उसने तो शर्त रखी अप्रसिद्ध अस्त्रों के शस्त्रों के द्वारा मेरा रथ को तोड़ा जाए। बोले अच्छा ऐसी बात है, चल वो भी हम तैयार कर। रथ क्षोणी है, ये सारी पृथ्वी को ही रथ बना दिया शिव जी ने। प्रसिद्ध रथ, पृथ्वी तो प्रसिद्ध रथ है नहीं, विष्णु का रथ अलग है, ब्रह्मा का रथ अलग है, इंद्र का रथ अलग है, सभी का रथ अलग। धरती को किसी ने रथ बनाया नहीं आज तक। भगवान ने कहा कि पृथ्वी को ही रथ बनाता हूं। रथ क्षोणी यंता सत धृति, ब्रह्मा जी को सारथी बना दी, जा चलो ये रथ हाँको। तो पृथ्वी रथ को हाँकने वाला यंता सतधृति, और पृथ्वी यदि रथ है तो इसके पहिया क्या होंगे? बोले चंद्रार्क, सूर्य और चंद्र को धरती रूपी रथ का पहिया बना दिया है। रथ चरण पाणी सरयति, विष्णु को कहा कि तुम तीर बन जाओ ले जी, और इंद्र को धनुष्बाण बना दी। इंद्र को बनाया धनुष्बाण, विष्णु को बनाया तीर है, ब्रह्मा को बनाया सारथी, सूर्य चंद्र को रथ का पहिया बना दिए, पूरे धरती को रथ बनाया और भगवान स्वयं बैठ गए। धनुष बाण भी तैयार हो गया, रथ भी तैयार हो गया ना। अब त्रिपुरासुर को उन्होंने ललकारा। अब तीनों रथ को एक ही तीर से तोड़ना, एक बार छोड़ना है तीर, दोबारे छोड़ना नहीं है। तो शिव जी इस रहस्य को जानते थे, 24 घंटे में एक मुहूर्त के लिए तीनों रथ लाइन से आते थे, उसको कहते अभिजीत मुहूर्त। 12 बजे दिन में 12 बजे वो अभिजीत नाम का मुहूर्त होता है, जिसमें ये तीनों रथ एक लाइन से आते हैं। भगवान शिव रथ सब तैयार करके हथियार लेकर प्रतीक्षा करने लगे। दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त कब आएगा? जब अभिजीत मुहूर्त आया तो देखा तीनों रथ, तीर छोड़ा एक तो एक ही तीर से तीनों रथ टूट गए और त्रिपुरासुर मर गया। अब ये जीवात्मा रूपी त्रिपुरासुर को कैसे मारेंगे भाई? यमराज तो एक रथ को मारता, दो रथ साबुत बचे रहते हैं, बचते हैं कि नहीं बोलो। एक यमराज एक रथ को तो तोड़ता है, अन्नमय शरीर, मांसमय शरीर, स्थूल शरीर को तो तोड़ता है, लोहे के रथ को तो तोड़ता है यमराज, लेकिन इसके अंदर जो दो रथ हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो यमराज तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए जीव रूपी त्रिपुरासुर बचा ही रहता है, मरता ही नहीं है, फिर दोबारा रथ तैयार कर लेता है वो, फिर तैयार दोबारे रथ तैयार कर लेता है, फिर घूमता है। अब ये तो देखो, पहला कारण शरीर को नाश किए बिना सूक्ष्म शरीर नाश नहीं होगा, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर नाश हुए बिना स्थूल शरीर का अत्यंत नाश नहीं। कारण शरीर बचा रहे, स्थूल शरीर का अत्यंतिक नाश हो संभव ही नहीं है। एक नष्ट होगा फिर पैदा होगा, एक नष्ट होगा फिर पैदा होगा, क्योंकि कारण बचा हुआ है तो कार्य तो कभी भी हो सकता है। कारण सम है तो कार्य तो कभी भी होगा, होगा कि नहीं बोलो। कारण नहीं होगा तो तब जाकर कार्य नहीं होगा, कारण ही नहीं रहेगा तो कारण नहीं रहेगा। निमित्तान अपाय नैमित्तिकस्याप्य अपाय, जिस निमित्त से जो बना है वो निमित्त ही गया तो नैमित्तिक भी जाएगा। तो कारण शरीर का नाश पहले किससे होगा बोलो? ज्ञान से ही तो होगा। ये ज्ञान किसका स्वरूप है? तो वही शिवा है, ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर। भगवान शिव क्या है? सर्व विद्या नाम ईश्वर, वही तो ज्ञान है। उसका प्रयोग करोगे तभी जाकर पहले कारण शरीर नष्ट होगा, कारण के साथ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तो अपने आप ही जाएगा, वो तो भर्जित बीज की तरह रह जाएगा। पहले कारण शरीर नष्ट हुआ तो वासनामय अज्ञानमय कारण शरीर, वासनामय सूक्ष्म शरीर, अज्ञानमय कारण शरीर नष्ट होते ही वासनामय सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, तो स्थूल शरीर तो भर्जित बीज की तरह पड़ा रहेगा, ये उत्पन्न नहीं कर पाएगा दूसरा शरीर, या पुनर्जन्म के लिए निमित्त नहीं बन पाएगा स्थूल शरीर। ये पुनर्जन्म का निमित्त तो सूक्ष्म शरीर, वासना और कारण शरीर की अविद्या, इनके चलते है। अब ये वेदांत फिलॉसफी आ गया है, अब हमारी बुद्धि का काम की पकड़ की परे है ये। तो भगवान शिव ने ही त्रिपुरासुर को मारा था, या शिव तत्व का अपरोक्ष ज्ञान ही जीव रूपी त्रिपुरासुर का अत्यंतिक निवृत्ति है, बस फिर जीव जीव रूप में नहीं रहेगा, कर्ता रूप में नहीं रहेगा, भोक्ता रूप में नहीं रहेगा। उधर संकेत किया पूरा जीते नित्याया त्रिगुणात्मने पुरजिते, पुरजिते माने त्रिपुरासुर को जिसने जीता, ऐसे भगवान शिव और किसी ने जीता नहीं है। कात्यायनी श्रेयसे ये भी तटस्थ लक्षण है। कात्यायनी माने पार्वती, माताएं, माताएं माने कन्याएं अच्छे पति के लिए इस मंत्र का जप करते हैं। तुम लोगों को शादी करना हो तो जप कर लेना माताओं। कात्यायनी महामाये महायोगिन यदीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ब्रजवालाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यही कात्यायनी व्रत किया था, इसी मंत्र का सतत जप किया था। इस मंत्र का जो देवी है इष्ट देवी भगवती पार्वती है। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो मंत्र जपा था वही मंत्र, वही ब्रजवालाओं ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जपा था। और सरोवर में स्नान करते थे तो कृष्ण पहुंच गए, उनकी साड़ी चुरा लिया। कहा भाई तुमने हमको स्मरण किया है, पतिम में कुरुते नमः, मुझे पति बनाना चाहते हो तुम लोग? बोले हाँ चाहते तो है, तो बना लो पति। बोले पहले कपड़ा दे दो। अब पति ही बनाना हो तो कपड़ा क्यों चाहिए? बोलो पति ही बनाना है तो कपड़ा क्यों चाहिए भाई? बोले ऑफिशियली पति तो अभी बने नहीं है ना, कपड़ा दो। ठीक है, जब तक ऑफिशियली पति नहीं बनते हो, ऑफिशियली पत्नी नहीं बनते हो, मैं ऑफिशियली पति नहीं बनूंगा, तुम लोग ऑफिशियली पत्नी नहीं बनोगे, तब तक ले कपड़ा ले जाओ। दे दिया। कब बनोगे महाराज ऑफिशियली पति? बोले समय आएगा तब। तब जाकर भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्चरंतु मन चक्रे योग माया समावृता। तब जाकर शरद पूर्णिमा के रात्रि को उन्होंने सबको बुलाया, क्लीम बीज मंत्र से सबको बुलाया, सब दौड़े दौड़े पहुंचे और उस दिन सबको रास किया, वो ऑफिशियली पति हो गए। है उनका वचन पूरा किया कि नहीं? इच्छा पूरा करते इसी मंत्र के प्रभाव से। तो कात्यायनी माने पार्वती, कात्यायनी श्रेय से, पार्वती के लिए सर्वश्रेष्ठ सब कुछ श्रेय ही भगवान शिव है, इसलिए शिव ही पार्वती के लिए श्रेय है। तो कात्यायनी श्रेय से तस्मै नमः जोड़ देना, ऐसे जो कात्यायनी के जो श्रेय हैं उनको ये मेरा नमस्कार है। सत्याया, और कैसे हैं जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो? सत्याय त्रिकालावाद्य तुम सत्यत्व, भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोक में जो एक रूप में रहे, पहले भी वह सच्चिदानंद अद्वितीय था, आज भी वह सच्चिदानंद अद्वितीय ही है, और सारा प्रलय हो जाने के बाद भी वही रहेगा, सच्चिदानंद अद्वितीय के ही रूप में रहेगा। सारा संसार का प्रलय होने पर उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है। ये सारा संसार नष्ट होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सत उसका स्वरूप है। और सारे संसार का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का ज्ञाता साक्षी होने के कारण चित है, और सब कुछ नष्ट होने पर भी कोई दुख न हो वो उसका स्वरूप है, इसलिए आनंद है, क्योंकि वो आनंद है। बोलो, सारा यादव वंश का जब प्रवास क्षेत्र में संहार हुआ, कृष्ण बैठकर रोए रहे होंगे कि नहीं? ने? आई मेरा कुटुंब सब नष्ट हो गया है, अपने देखते देखते सब कुटुंब नष्ट हो गए प्रवास क्षेत्र में, है पेड़ के नीचे टांग हिलाकर बैठ रहे लोग। किसी की टांग कब हिलती है? जब अंदर से मस्ती आती है तब टांग हिलती है। टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर टांग हिलाते, गम में किसी का टांग हिलता है? हाँ? नहीं हिलता, मस्ती आती है तो, क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है, सब कुटुंब नष्ट होने पर भी उसको दुख नहीं, सचित आनंद अद्वितीय सत्याय आदि कुटुंबिने। ये भगवान शिव का नाम है आदि कुटुंबिने। तुम लोग गृहस्थ हो कि हम तो सन्यासी हो, तुम लोग तो गृहस्थी हो ना, तुम्हारा तो अपना कुटुंब है ना, और उस कुटुंब को चलाने की तुमको चिंता है कि नहीं है? अरे सबसे पहला कुटुंबी तो शिव है। सबसे बड़ा गृहस्थी तो वही है। संसार में गृहस्थियों का संप्रदाय कब से चला, कहां से चला? आदि कुटुंबिने। ये समझे कि नहीं? इसलिए शिव का नाम क्या है? आदि कुटुंबी, तस्मई आदि कुटुंबिने। तुम्हारा पूर्वज वही तो है शिव, वहीं से गृहस्थ शुरू हुआ है। माता तो पार्वती देवी, पिता देव महेश्वरा, ये आदि कुटुंबी। देख लो अन्नपूर्णा स्तोत्र में माता कौन है? पार्वती। पिता कौन है? महेश्वर। और उनके वंश संतति कौन है? बांधवा शिव भक्ताश्च। उनका घर क्या है? स्वदेश भुवन त्रयम्। देख लो वही उनका घर है, वही उनके कुटुंब है। ये सारा संसार के जीव जितने भी उनके परिवार बच्चे हैं, इसका भी बड़ा सुंदर ढंग से पुष्पदंताचार्य जी ने वर्णन किया है। तुमको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कितनी खटपट करनी पड़ती है ना? चार सदस्यों का परिवार चलाना तुम्हारे लिए कितना मुसीबत है, और शिवजी को इतना विश्व ब्रह्मांड का इतना बड़ा कुटुंब चलाना कैसे चला रहे होंगे, किससे चला रहे हैं बोलो? महोक्ष खटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेतीयत तव वरद तंत्रोपकरणम। हे वरदा, ये सात वस्तु, ये सात वस्तु तवा तुम्हारे हैं, तुमने अपने पास रखी है। क्यों रखी है इन सात वस्तुओं को? क्योंकि ये सात वस्तु तंत्रोपकरणम, तंत्र माने कुटुंब। तंत्र का अर्थ होता है कुटुंब। पहला वस्तु क्या है? खटवांग। महोक्ष बूढ़ा बैल। आप लोग होंडा सिटी रखते हो ना? आप लोग होंडा सिटी रखते हो कि नहीं? वो क्या रखते हैं? बूढ़ा बैल, वो उनका होंडा सिटी है। हाँ, महोक्ष, महोक्ष माने बूढ़ा बैल। महोक्ष खटवांग, खाट का एक अंग, वो भी टूटा हुआ फूटा हुआ खाट, खट अंग, खाट का अंग खटवांग। आप लोग पलंग रखते हो। परसु फरसा, आप लोग घर में तरकारी सब्जी काटने के लिए फल फूल काटना हो तो एक चक्कू तो रखते हो ना? गृहस्थी लोग, गृहस्थ हो और घर में चक्कू ना हो, चक्कू तो होगा ही। महोक्ष खटवांग परसु, तीन वस्तु हो गए ना। अजीनम कपड़ा, अजीन माने कपड़ा, मृग चर्म, बागंबर, दंती त्वक, हाथी के छाल है, बाघ का छाल, मृग का छाल, उसको अजीन बोलते हैं। हाँ, महोक्ष खटवांग, क्योंकि गृहस्थी होने से तो कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, हम सन्यासी तो कपड़ा पहन रहे हैं, नंगे तो चला नहीं जाएगा गृहस्थियों में है। समाधि लगाना हो तो भले नंगे लगाओ, कुटुंब के साथ संसार में व्यवहार करनी हो लज्जा निवारण तो होनी चाहिए, शीत निवारण, लज्जा निवारण, तो क्या रखा उसके लिए वस्त्र? अजीनम, बागंबर, मृग चर्मा, हाथी का चमड़ा। महोक्ष खटवांग परसु अजिनम भस्म, हाँ भस्म, चिता भस्म, क्योंकि बर्फ में रहते हैं, ठंडियों में रहते हैं, तो शरीर में भस्मी का लेपन करोगे तो गर्मी होता है, ठंडी नहीं लगती है। तो तुम लोगों ने देखा होगा इलाहाबाद में कुंभ मेला है, माघ, माघे संक्रांति, मकर संक्रांति, ऐसे ठंडी में नागे बाबा भस्मी लपेटते चल पड़ते हैं, ले जी। तुम हम तो इतने कम्बल स्वीटर शॉल कितना लगा लगा के भी कांपते रहते हैं, और वो हर हर महादेव करते हैं, राग लपेट के चल पड़ते हैं नंगे, लगौटी भी नहीं है, है? और दूसरी बात, कहीं मीटिंग सिटिंग में जाना पड़े तो मेकअप करना पड़ता है ना, तो पाउडर पाउडर का भी काम करे वो भस्मा पाणीनम है। देखो हम यहां कथा करने से पहले मेकअप करके आए हैं, त्रिपुंड लगाया है, ये देख लो भस्मा पाणीनम, पानी ना, अब आभूषण भी चाहिए, पानी ना, सर्पक माला, पानी ना, अब बर्तन चाहिए कि नहीं, गृहस्थी है तो बर्तन चाहिए, दो चार भंडे तो चाहिए कि नहीं, कपालम निरकरोटी कपालम है, तो खप्पर जो मरे हुए, और क्या मल्टीपर्पज खप्पर है उनका, कड़ी भी पकाओ तो चलेगा, पित्तल के बर्तन में कड़ी पका सकते हो तुम लोग है, नहीं पका सकते ना, स्टील में तो पका सकते हो, अल्मोनियम में तो पका सकते हो, पित्तल में नहीं पका सकते कड़ी। अब कहीं नींबू निचोड़कर अचार बनाना हो तो वो भी नहीं। अब भगवान शिव का जो खप्पर है वो तो मल्टीपर्पज, अचार भी बना लो उसी में, कड़ी भी बना लो, बिगड़ेगा नहीं कुछ नहीं, दही भी खा लो, खीर भी खा लो, हैं? मिट्टी का बर्तन कहां खरीदने जाओ, कहां खोजने जाओ, मशान घाट में घूम रहे थे, एक बढ़िया कटोरा खप्पर का मिल गया, क्या मस्त, कोई चोरी करके न ले जावे, हैं? बोलो ना, क्या बढ़िया। यूं तो चांदी का बर्तन बनाओगे तो सब मल्टीपर्पज होगा, अचार भी बना सकते हो, लेकिन चांदी का बनाओगे चोरी होने का डर होगा, खप्पर तो कपालम च इति इयत, यही सात वस्तु इतनी ही है आपके पास, इसके अलावा आपके पास संपत्ति नाम का और आठवां वस्तु है ही नहीं। ये भी आपने क्यों रखा पता है, तंत्रोपकरणम, क्योंकि आप आदि कुटुंबी ने हो, गृहस्थ हो, पार्वती पत्नी है, कार्तिक और गणेश दो बेटे हैं, है ना, नंदी बिरंगे आपके गण हैं, कुटुंब है, परिवार है, व्यवहार करनी है, थोड़ा बहुत रखना ही पड़ता है सामग्री, और इतनी से आपने इतना बड़ा विश्व कुटुंब चलाया है, सारा विश्व कुटुंब परिवार भगवान शिव ने चलाया, साधन कितना रखा है, तो इति इयत, यही सात वस्तु हैं। तो मतलब यह है कि आपका कुटुंब चलाना कोई बहुत कठिन की बात नहीं, आपकी जो अपेक्षा है वो बहुत समस्या खड़ी कर देती है, आपकी जो अपेक्षा है ना वही समस्या खड़ी कर देती है, नहीं तो कोई समस्या नहीं। सत्यायादि कुटुंबिने मुनि मन प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये, आपका जो चैतन्य स्वरूप है चिन्मूर्ति, चित मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान स्वरूप, ये स्वरूप का मुनि मन प्रत्यक्ष, मुनियों के, ऋषियों के, मननकर्ताओं के, श्रवण के बाद मनन करोगे तब निधिध्यासन की अवस्था में भगवान का जो चैतन्य स्वरूप है उस हृदय में प्रत्यक्ष होगा, अपरोक्ष होगा। तो मुनि मन प्रत्यक्ष चिन्ह मूर्तये, चैतन्य यानी ब्रह्म, चेतना, आत्मा, ज्ञान के रूप में आप मनन कर्ताओं के हृदय में प्रत्यक्ष होते हैं, माया सृष्ट जगत्रता जगत्रयाय, और आप माया के माध्यम से तीनों जगत के सृष्टि करता हो, ऐसे माया सृष्ट जगत्रयाय, तीनों लोक की माया के माध्यम से तीनों लोकों की रचना करने वाले आपको मेरा ये नमस्कार है। भगवान शिव के द्वारा जगत की रचना तो अनेक शास्त्रों में वर्णन है ही है। हाँ, वेद सार शिव स्तोत्र में तत्तो भवत् तत्तो जगत भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदे तदीश लिंगात्मके चहर चरा चर विश्वरूपिन। यही तो है, भगवान शिव से ही, हे शिव आपसे ही ये जगत उत्पन्न हुआ, आप में ही ये जगत स्थित है और आप में ही ये जगत लीन हो जाता है, ऐसे लिंग स्वरूप आपको मेरा ये नमस्कार है। और पुष्पदंताचार्य जी ने भी महिमनि स्तोत्र में भगवान शिव से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय बताया। बहुल रज से विश्वत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्तो दृक्तो मृडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्यै शिवाय नमो नमः। यही तो तीन गुणों के माध्यम से तीन जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप हैं। बहुल रज से, जब रजोगुण की अधिकता को उपाधि बनाकर रजो उपहित चैतन्य के रूप में शिव प्रकट होते हैं तो जगत के उत्पत्ति कर्ता बन जाते हैं, निमित्त कारण बन जाते हैं। तमोगुण के उपाधि को, अत्यधिक तमोगुण को आलंबन करके तमो उपाधि वाला चैतन्य भगवान शिव होते हैं, तब इस उत्पन्न किए हुए जगत का संहार कर्ता बन जाते हैं। और अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए जगत की स्थिति और पालन करना होता है तो भगवान शिव सत्वगुण को उपाधि धारण करके, सत्वगुण के माध्यम से जगत का पालन करके जगन मृड, मृड माने आनंद प्रदान करने वाले, और तीनों गुण से अलग होते हैं तो वो शिव रूप में रहते हैं। गुणातीत परमात्मा का नाम शिव, रजोगुण युक्त परमात्मा का नाम भव, तमोगुण युक्त परमात्मा का नाम हर, सत्वगुण युक्त परमात्मा का नाम मृड। इसलिए हम रोज सुबह प्रार्थना कराते हैं ना, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृडाय नमः। भवाय नमः, हराय नमः, मृडाय नमः, ये तीन भवा, हरा और मृडा, ये तीन तटस्थ लक्षण है, ये तीन शिव के तटस्थ लक्षण है, सोपाधिक लक्षण है, त्रिगुणात्मिक स्वरूप है, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता स्वरूप है। और तीनों गुण से अलग होते हैं तो शिव शुद्ध शिव रूप में रहते हैं, चैतन्य रूप में रहते हैं। इसलिए यहां का माया सृष्ट जगत त्रयाय, माया के द्वारा तीनों जगत की रचना जिन्होंने की है, सकलामनांत संचारिणे, सकल आमनायांत संचारिणे, आमनाय माने वेद, वेदांत, तो पहले भी आ चुका है श्लोक, वेदांतोपबने मयूर के रूप में कहा है ना। मयूर कहां नाचता है? वन में। शिव भी नीलकंठ है, मयूर भी नीलकंठ है। मयूर कुन जंगल में नाचता, कहां नाचता है? तो बगीचे में नाचता है। शिव कौन से बगीचे में नाचते हैं? भगवान शिव नीलकंठ। वेदांतोपबने लगभग उसी का आमनायांता वेद के अंदर छुपे रहते हैं। और शिव का दर्शन करना चाहते हो तो वेद रूपी जंगल बगीचे में तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं शिव का दर्शन होगा, क्योंकि वहीं विचरण करते, यानी वेद से बाहर शिव का और कोई स्वरूप नहीं। ऐसे जो सकल आमनायांत संचारिणे तस्मै सायंतांडव संभ्रमाय, सायंकाल प्रदोष समय में नाचने चाहने वाले, तांडव नृत्य करने वाले, तांडव नृत्य करने में उत्सुक उद्दत प्रवृत्त होने वाले, ऐसे संभ्रमाय जटी ने, जटाधारी जटी ने सेयम नति संभवे, ऐसे संभवे भगवान शिव को इयम नति। ये सारे विशेषण हैं तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के द्वारा, ऐसे शिव को मैं ये नमस्कार करता हूं। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भैया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।